निषेक आदे अस्मसान अन्ते संस्कारे संस्कृतः द्विजः इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान् ज्ञानदीपेषु जुह्वते निषेकादे सानान्ते संस्कारे संस्कृतो द्विजः इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान् ज्ञानदीपेषु जुह्यते निषेकादे श्मशानान्ते संस्कारे संस्कृतो द्विजः शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। निषेक आदे जीवन का प्रारंभ गर्भाधान संस्कार श्मशान अंते तथा मृत्यु के समय जब शरीर को श्मशान घाट पर जला दिया जाता है। संस्कारे संस्कार द्वारा संस्कृतः शुद्ध किया गया द्विजः दो बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण इंद्रियेषु इंद्रियों में क्रियायज्ञान कर्म तथा यज्ञ जिनसे उच्च लोकों में जाया जाता है। ज्ञान दीपेषु असली ज्ञान के प्रकाश से जुह्वते अर्पित करता है। अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। द्विजन्मा ब्राह्मण को गर्भाधान संस्कार के द्वारा अपने माता पिता की अनुकंपा से अपना जीवत्व प्राप्त होता है। जीवन के अंत में अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की जाती है। इस तरह योग ब्राह्मण को भौतिकतावादी कार्यों तथा यज्ञों में अरुचि हो जाती है, किंतु वह इंद्रिय यज्ञों को पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म इंद्रियों को अर्पित कर देता है, जो ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित रहती है। कृपया इस अनुवाद को दोहराइए। द्विज द्विजन्मा ब्राह्मण को गर्भाधान संस्कार के द्वारा अपने माता पिता की अनुकंपा से अपना जीवत्व प्राप्त होता है। जीवन के अंत में अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की जाती है। इस तरह योग्य ब्राह्मण को भौतिकतावादी कार्यों तथा यज्ञों में अरुचि हो जाती है, किंतु वह इंद्रिय यज्ञों को पूर्ण ज्ञान के साथ कर्मेंद्रियों को अर्पित कर देता है, जो ज्ञान की अग्नि से प्रकाशित रहती है। ओम यज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल स्वरूपाय सर्वानंद विधायिने। हरे कृष्णा। इस प्रातःकालीय श्रीमद्भागवत कक्षा में आप सबका अभिनंदन करते हुए श्री राधा राधिका रमण के चरणों में प्रणाम करते हुए इस प्रसंग पर हम लोग अपने मति को अपने चित्त को अपने विचार को ले चले, जहां कथा कल स्थित थी। क्योंकि जब तक हम लोग प्रसंग के ऊपर अपने चित्त को नहीं टिकाते हैं, तब तक कथा प्रसंग समझ में नहीं आती। कल के श्लोक को हम लोग सुन चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञांति करने के बाद भी उतनी शुद्धिकरण नहीं हो पाती जितना कि हमें होना चाहिए। अब देखिए, इस प्रसंग के अंदर पूरे सारे कर्मों को एक क्रम वाइज दिया गया है। वर्ण और आश्रमों की स्थिति को समझाते समझाते ब्राह्मणों की स्थिति पर विशेष करके ज्यादा नारद जी ने बल दिया, और इन चारों वर्ण और आश्रमों की स्थिति से जो ऊपर की स्थिति में उठा जाए उन स्थितियों का वर्णन है। क्योंकि भक्ति के दो मार्ग बताए गए हैं, पिछले वाले श्लोकों को पढ़े होंगे आप लोग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है जिसको हम लोग पकड़े हुए हैं। प्रवृत्ति प्रकृष्ट रूपेण जो हमारा व्यापार है, जो हमारा धंधा है, हम उसी में लिप्त हैं, लेकिन यह हमारी वास्तविक वृत्ति नहीं है। जिस प्रवृत्ति के अंदर हम लोग लिपट करके कुछ ऐसे पुण्य कर्म हासिल करते हैं, कुछ अंशतः उच्चतर लोकों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां हमें वास्तव रूप में जाना चाहिए, जहां हमारा वास्तविक घर है, हम वहां नहीं पहुंच पाते। इससे ज्यादा स्पष्ट लगती है इन प्रसंगों से कि प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि कितना भी हम कठिन तपस्या कर लें, यज्ञ यज्ञांति कर लें, कितने भी पुण्य कर्म हम हासिल कर लें, कितने भी उच्च लोकों की स्थिति को हम प्राप्त कर लें, लेकिन फिर हमें पुनः इस स्थिति में आना पड़ता है। अर्थात आपना संस्कृति घोना हो रहा, जो यह संस्कृति का जो मार्ग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हम अपने को छुड़ा नहीं पाते। तो इस प्रवृत्ति मार्ग को भी नारद जी यहां वजह बताते हैं कि इस प्रवृत्ति मार्ग को भी पकड़ने वाले व्यक्ति शुद्ध नहीं है, वह अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। अब प्रवृत्ति मार्ग का हम लोग तो पढ़ चुके हैं, दो श्लोकों के अंदर वर्णन किया गया है, लेकिन खास करके कल के लास्ट वाले श्लोक और आज के श्लोक में निवृत्ति मार्ग का जो उच्चतम स्थिति है उसका वर्णन किया जा रहा है। जैसे आज के श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द्विज जो दो बार जन्म लेता है, अर्थात ब्राह्मण, अपने माता पिता की अनुकंपा से जब वह इस जीवत्व को, इस शरीर को धारण करता है, शरीर धारण करने के बाद, क्योंकि शरीर धारण करने से पहले भी गर्भाधान संस्कार होता है, अगर उस स्थिति से अगर जीव किसी गर्भ में प्रवेश करता है तो उसकी आने वाली स्थिति बिल्कुल सहज हो जाती है। उस आधार पर इस अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब उसकी अंत्येष्टि जन्म से लेकर जन्म भी अच्छा तरीके से हुआ गर्भाधान संस्कार के रास्ते से, और उसकी अंत्येष्टि क्रिया भी एक संस्कार के माध्यम से किया गया, तो दोनों की स्थिति से उसका जो जीवन है सुचारू रूप से चल गया। इसलिए उसको द्विज शब्द उसके लिए आया है कि उसका जो संस्कार किया गया, गर्भाधान संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार, उसके प्रभाव से उसकी जो शरीर की फलश्रुति है वो पूरी हो जाती है। लेकिन इतने से ही यह पूर्ण नहीं हुआ, ब्राह्मण बना। देखिए जो आश्रमों का वर्णन किया गया है उसके अंदर वर्णन करते करते यहां भी युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणत्व के गुण को उच्चतम स्थिति पर ले जा रहे हैं कि ब्राह्मण की स्थिति वह है जो इन कार्यों से, प्रवृत्ति के मार्ग से भी ऊपर उठ करके केवल कृष्णायिक शरणों की स्थिति में अपने को पहुंचा लेता है, वही ब्राह्मणत्व के असली गुण को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि जीवन का जो चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उस चीज को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण के गुणों से भी ऊपर उठने के बाद तब विशुद्ध स्थिति में पहुंच करके हम भगवान की भगवत्ता को जान पाएंगे। क्योंकि जब ब्राह्मण अच्छे तरह से संस्कारित हो जाता है तो जो कर्म कांड किए जाते हैं इनमें उसकी अरुचि पैदा हो जाती है। श्री श्री राधा राधिका रमण जी के, क्योंकि संस्कार से ही धीरे धीरे ऊपर उठ करके ऐसे जो कर्मकांड को भी एक मतलब जागतिक संस्कार के अंदर माना जाता है, लेकिन इसकी पूर्ण स्थिति तब पूरी होती है जब इन स्थितियों से ऊपर उठ करके केवल एकाकी भक्ति के स्तर पर हम पहुंचते हैं। अब प्रभुपाद जी के विचारधारा को आप सुनिएगा अनुवाद तात्पर्य के अंदर कि प्रभुपाद जी इन सबको समेट करके कहां खींच रहे हैं। इंद्रियों के विषयों को और कर्मेंद्रियों के फल को जब पूर्ण रूप से हम भगवत चरणों में अर्पित कर देते हैं तब हमारी वास्तविक स्थिति मिल जाती है। यज्ञ के भोक्ता इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म फलों का भोक्ता एकमात्र भगवान है। इन सबके फलश्रुति को जब हम उनके चरणों में अर्पित करते हैं तब हमारा यह दो जो दैहिक धर्म है वह पूरित होता है। क्योंकि जब तक हम इस यज्ञ आदि कर्मों में फंसे रहेंगे तब तक हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हमारे सोसाइटी में केवल एक ही शिक्षा दी जाती है कि चांट एंड बी हैप्पी, बस और कुछ नहीं करना। भगवत नाम लो और हमेशा खुश रहो। यह जो विचारधारा है अगर कृष्ण कविराज गोस्वामी जी के भाषा में अगर चैतन्य चरितामृत में हम लोग पढ़ते हैं तो यह समझ पाते हैं कि कोई भी वर्ण और आश्रमवासी अगर कृष्ण का भजन नहीं करता है, कृष्ण का नाम नहीं लेता है तो उसका वर्ण और आश्रम बेकार गया। क्योंकि अपने असली स्वरूप का जो कर्म है वो नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर परोक्ष रूप में देखा जाए तो इन श्लोकों के अंदर बहुत गुहे रहस्य यही छिपा हुआ है कि जो भी कर्म किए जाए केवल संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इन्हें तो जितना भी यज्ञ तपस्या आदि किया जाता है तो उसका फल केवल हमको बांधने वाला होता है। कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति हमें केवल महसूस होती है उच्चतर लोकों में पहुंचने के बाद कि हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं होता। फिर उसे बैंक बैलेंस मतलब माइनस होने पर फिर यहां वापस आना होता है। तो इससे ऐसा लगता है कि वास्तविक जो कर्म है अगर संसिद्धि तोषणम अगर हम करते हैं, भगवान को संतुष्ट करने का हम प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। आप पिछले वाले श्लोक पढ़ेंगे तो जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया गया है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं कि समय पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। समय पुंसाम सभी मनुष्यों के केवल एकमात्र धर्म है, अप्रतिहता और अहेतु की भक्ति करना अर्थात भगवान की सेवा में पूर्णतः लग जाना, यह है निवृत्ति मार्ग का उच्चतम परिकाष्ठा। काय मनसा वपुषा मतलब इन तीनों से केवल भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास। श्रील प्रभुपाद महाराज की इनके तात्पर्य को हम लोग पहले सुन लें उसके बाद इस श्लोक के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य के अंदर कि जो लोग भौतिकतावादी कार्यों में रुचि लेते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहते हैं। पिछले श्लोक में प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या की जा चुकी है। प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या पिछले श्लोकों में इस प्रकार की गई कि जितना भी हम तपस्या कर लें, यज्ञांति कर लें, लेकिन कुछ समय के लिए उच्च लोकों की प्राप्ति होता है लेकिन फिर वहां से वापस आना पड़ता है। यह है प्रवृत्ति मार्ग अर्थात अंततः पूर्ण रूप से सुख नहीं दे पाता, अर्थात मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा वो प्राप्त नहीं कर पाता प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जिसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान होता है वह उन श्लोकों तक उठने की विधि त्याग कर ध्यान से सुने। कि अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जिसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान होता है वह ऊंच लोकों तक उठने की विधि त्याग कर निवृत्ति मार्ग ग्रहण करता है। अर्थात जब ये कर्म कांड आदि इन स्थितियों में अपने आप को नहीं फंसाता। हम लोग भागवत के दशम स्कंध में पढ़ते हैं, दस शायद 53 अध्याय के अंदर है, यह बात बताई गई है, चाहे यह प्रसंग उसमें भी आया है कि जब यज्ञ पत्नियां भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना सब कुछ त्याग करके चली जाती हैं, यहां तक कि अपने पतियों की भी अवहेलना करके वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए चल देती हैं। आप दोनों तरफ से ले सकते हैं कि देखिए ब्राह्मण लोग धुआं पीने में मस्त हैं, यज्ञ में इतने मस्त हैं कि ग्वाल वाल कुछ संदेश लेकर के आए, उन संदेश को ठीक से उन लोगों ने सुना भी नहीं। ये लोग क्या कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम थोड़े ही दूरी पर यहां आए हुए हैं और वो भूखे हैं, कुछ भोजन मांग रहे हैं, इन बातों को लोग ध्यान भी नहीं दे क्योंकि वो यज्ञ में मस्त थे। यह है प्रवृत्ति मार्ग। लेकिन उनकी पत्नियों की स्थिति को देखिए कि किस प्रकार से स्त्री जाति में होने के बावजूद भी किस प्रकार की निवृत्ति मार्ग में अपने को लगाए। ब्राह्मण लोग रोकते रह गए फिर भी वो उन बातों पर ध्यान न दे करके, ग्वाल वालों के बात पर ध्यान दे करके और भगवान को संतुष्ट करने के लिए भोजन की थाली लेकर के चल दी। मतलब किसी भी प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास जो जीव का है उसी को निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। अगर यह देखा जाए तो यह सन्यासियों के स्थिति से भी ऊंची स्थिति है, जो पूर्ण रूप से वैरागी बाबा जी बनते हैं उनकी यह स्थिति होती है कि वह इस मार्ग को पकड़ करके प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग को और अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ति करते हैं। क्योंकि यह स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है निवृत्ति मार्ग, क्योंकि यह देखा जाता है मनुष्यों की कि घर छोड़ा, पुत्र और परिवार छोड़ा, अपने आश्रम को भी चेंज कर दिया लेकिन मानसिक स्थिति हमारी नहीं सुधर पाई, कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति बनी है सूक्ष्म रूप में, तो यह भी निवृत्ति मार्ग का परिचायक नहीं है। सूक्ष्म रूप से अगर हमारा मन कहीं पद से, जस से, प्रतिष्ठा से अगर चिपका हुआ है तो यह पूर्ण रूप से निवृत्ति मार्ग नहीं है। क्योंकि निवृत्ति मार्ग का अर्थ ही है कि असहाय बनना, एकमात्र अवलंबन भगवान है और हमारा कोई नहीं है, यह है निवृत्ति मार्ग। उसका एकमात्र व्यापार है केवल भगवान को खुश करना। ऐसे भक्त पर पूर्ण रूप भगवान भी निर्भर रहते हैं और भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से वह भक्त निर्भर रहता है। यह है प्रेम का आदान प्रदान और यह है प्रेमाभक्ति, क्योंकि अब उसको और कोई सहारा नहीं देखता। भागवत का दशम स्कंद का अगर हम 80 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके अंदर कालिंदी जी जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थी वो अपने हृदय की भाव को व्यक्त करती है, भागवत के अंदर कहती हैं ऐसे तो अन्य पटरानियां भी, बहुत सी पटरानियां अपनी अपनी हृदय की भावना को व्यक्त की हैं, क्योंकि एक बार द्रौपदी जी इच्छा की कि इन पटरानियों ने किस किस प्रकार से भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रदान की, प्रेम की प्राप्ति कैसे कैसे की। हे वैदुर्ज चुते भद्रे जामवंती कौशले, हे वैदुर्ज चुते भद्रे जामवंती कौशले, सौव्या रोहिणी लक्ष्मणे जामवंती, मतलब एक शब्द मैं इसके अंदर भूल रहा हूं कि जो अलग अलग सबका इसमें नाम गिनाया गया है, सब लोगों ने अपने अपने हृदय की भाव को व्यक्त की है कि मैं कैसे भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त की, मैं कैसे भगवान कृष्ण को प्राप्त की, अपने अपने हृदय की भावना को व्यक्त करते हैं। उसे कालिंदी देवी, कालिंदी रुवाच, कालिंदी देवी कहती हैं कि मैं जल के रूप में, मैं इतने दिन तक तपस्या कर रही थी, उस तपस्या को देख करके भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्नचित हुए कि अपने चरणों का स्पर्श, अपने स्वरूप का दर्शन और अपना आलिंगन मुझसे करा दिए, वैसे मैं भगवान श्री कृष्ण परम प्रेमी पुरुष को मैं अपने हृदय की भाव व्यक्त करती हूं और मैं इस प्रकार की अपनी इच्छा व्यक्त करती हूं कि मैं उनके घर में सदा झाड़ू लगाने वाली दासी बन करके रहूं। इतनी ऊंची स्थिति है। पटरानी है, भगवान ने सारी लीला जो अगर जल क्रीड़ा से लेकर के देखिए, महारास देखिए, सारे जमुना किनारे हुए। कालिंदी देवी अपने हृदय की भाव को व्यक्त करती है कि वह भगवान जिसने इतना कृपा किया मेरे तपस्या को देख करके कि मुझे अपना चरण स्पर्श दिया, अपना आलिंगन कराए अर्थात उसमें स्नान किए, जो भी रास मतलब जल क्रीड़ा किए, वैसे भगवान केवल अकेले मुझे दर्शन नहीं दिए। उस श्लोक के अंदर आया है कि अपने प्रिय सखा अर्जुन सहित उस भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया, कृपा किया, वैसे भगवान को मैं अपने हृदय में रखती हूं और वैसे भगवान की मैं दासी, उनके घर की दासी बनकर के झाड़ू लगाने में आनंद की अनुभूति करती हूं। आप सोचिए कि हम लोग थोड़ी सी कुछ भी करते हैं, एकादशी कर लेते हैं, ज्यादा वाला कर लेते हैं, अगर कोई वाहवाही मिल जाती है तो कितने उल्टी दिशा में खुल जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन इतना भगवत कृपा प्राप्त होने के बावजूद भी, इतनी कुछ भगवान की सेवा करने के बाद भी, इन शुद्ध भक्तों की स्थिति को आप देखिए कि क्या उनके हृदय की भाव है। उसी स्तर पर आप इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी के हृदय के भाव की आंकड़ा लगा सकते हैं। ठीक इसके अगले लाइन में प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिखते हैं कि दूसरे शब्दों में भगवत धाम जाने की तैयारी करता है, अर्थात नृति मार्ग पकड़ने वाला व्यक्ति अपने सारे रास्ते के कूड़े करकट को साफ करते हुए वह सीधा चलते जा रहा है भक्ति की तरफ, भगवान के धाम जाने की तैयारी कर लिया, वह पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखता कि और कुछ है मेरे पीछे। दूसरे शब्दों में भगवत धाम जाने की तैयारी करता है, जो लोग ब्राह्मण होकर नास्तिक होते हैं वे प्रवृत्ति या नृत्य मार्ग के विषय में कुछ नहीं जानते। मेरे महाराज तो कहा करते हैं कि सबसे बड़े नास्तिक जो व्यक्ति हैं वह है और सबसे बड़े पापी वह है। प्रभुपाद जी ने भी कई जगह लिखे हैं कि जो भगवान को निराकार कहता है उससे बढ़कर के अपराधी और उससे बढ़कर के नास्तिक व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा करने से मतलब अपने शरीर को चुराता है कि उनकी सेवा न करना पड़े, इसलिए वह भगवान को नकारात्मक दृष्टि से कहता है कि भगवान का कोई मतलब स्वरूप ही नहीं है, निराकार है। अरे जिसने सबको निराकार दिया, जिसने सबका आकार दिया, उसको ही तू मिटा दिया। अब इससे बड़ा अपराधी और कौन होगा? अरे बाल रूप में या पौगंड रूप में या जिस रूप को तुम अपने हृदय में रख पाओ, उस रूप को अपने हृदय में रख करके उनकी सेवा करने में मस्त रहो ना। उनको ही भगा दिया अपने हृदय से, कोई आकार नहीं। वे हर हालत में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अतः हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों को प्रवृत्ति मार्ग छोड़ने और नृत्य मार्ग को स्वीकार करने का प्रशिक्षण देता है, जिससे भगवत धाम वापस जाया जा सके। आप सोचिए कि प्रभुपाद जी इस्कॉन सोसाइटी की स्थापना किए तो उनके अंदर केवल यही भावना था कि सब कुछ छोड़ करके कृष्ण को खुश करने का प्रयास किया जाए, और देखा जाए तो यही वास्तव में निवृत्ति मार्ग का जो है उच्च स्थिति है कि सब कुछ छोड़ करके कृष्ण को केवल प्रसन्न किया जाए। कृष्ण की प्रसन्नता में सबकी खुशी है। अगर कृष्ण को छोड़कर के अगर हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम गलत रास्ते पर हैं। भगवान खुश हो गए, सब कुछ सब खुश। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं केवल यही चाहता था और मैं इसीलिए इस सोसाइटी की स्थापना किया कि सारे रास्तों को छोड़ करके केवल इस सोसाइटी के जो भक्त हैं केवल नृत्य मार्ग को अपनाएं, एकाकी भक्ति करें, अपने बुद्धि को केवल कृष्ण के चरणों में लगाएं। एक प्रसंग और मेरे हृदय को टच करता है कि जैसे रुक्मिणी जी जब ब्राह्मण को कुछ कह करके भेजती है भगवान श्री कृष्ण के पास लेटर दे करके, तो रुक्मिणी जी के जो पिताजी थे विदर्भराज, उनके महल में ब्राह्मण लोग आया करते थे और भगवान के गुणों का गुणगान उन्होंने सुनी थी। भगवान ऐसे हैं, वे हैं, वो है, उनके गुणों की मैंने उन्होंने अपने गुणों की भगवान के गुणों के हृदय में धारण की थी और वह भाव धीरे धीरे ऐसे पका कि वो मन ही मन यह मनोधारणा बना ली कि यह पुरुष जिसके विषय में जिसके गुणों का गुणगान किया जा रहा है वही एकमात्र मेरा पति बनने लायक है। तो इस प्रकार की भावना को सुन करके रुक्मिणी जी कहती हैं एक श्लोक के अंदर कि स्त्रीवड़तम सुरणतम सुरताम कथम, वो नहीं है, ये श्लोक है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुरताम ते कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश मखिलार्थ लाभम ते यच्युत विसत चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी जी अपने हृदय की भाव व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मैंने भगवान अच्युत के गुणों के विषय में सुन रखी है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता इस पत्र को लेकर के आप वहां जाइए और उसके जैसा त्रिभुवन में कोई सुंदर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जिसके रूप का, गुण का, उनके लीला का सब कुछ वर्णन किया जाता था वो ध्यान से सुनती थी रुक्मिणी जी, और वो अपने हृदय की भाव व्यक्त करते हुए कहती हैं कि केवल उस पुरुष का रूप का, गुण का, लीला का श्रवण करने मात्र से जो हृदय का ताप है वह शांत हो जाता है। इसलिए मैंने ऐसा निर्णय ले चुकी है कि एकमात्र मेरा केवल पति बनने लायक है तो वही पुरुष है, इसलिए उसी के पास यह पत्र लेकर के जाओ। आप सोचिए कि एक भक्त को इस प्रकार का अगर उसकी कॉन्शियसनेस होती है, उसकी अगर कृष्ण भावना उत्कृष्ट होती है तो वह कैसे आकर्षित होता है भगवान की तरफ। इस प्रकार का कई श्लोक आया है भागवत के अंदर कि अगर भगवान को अपने हृदय में धारण करना हो, भगवान को अगर अपना बनाना हो तो भगवान के रूप का, भगवान के लीला का, भगवान के नाम का, भगवान का गुण का, मतलब जो महिमा है सुनना चाहिए। क्योंकि अगर उसी प्रसंग में, रुक्मिणी प्रसंग में यह है कि जब भी ब्राह्मण लोग मतलब कथा सुनाते थे रुक्मिणी के पिता के मोहल्लों में, तो जितने भी उस गांव के लोग थे अगर भगवान के विषय में वर्णन सुनते थे तो वह निर्णय वो लोग भी अपने मन में यह भाव उठा लिए थे, बैठा लिए थे कि एकमात्र इतना जिस पुरुष का सुंदरता का और गुणों का गुणगान किया जाता है वह केवल एकमात्र रुक्मिणी का पति बनने लगा। वो लोगों का भी यही निर्णय था और उस निर्णय को, उस चीज को सुन सुन करके रुक्मिणी जी ने यह अपनी अंतिम अभिलाषा यही व्यक्त की कि एकमात्र वही पुरुष मेरा पति बनने लायक है, इसलिए उसी पुरुष को अपने हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है। आप देख सकते हैं कि निवृत्ति मार्ग को कैसे विकसित किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, केवल श्रवण मात्रेण भगवान के गुणों का, रूपों का, उनके लीलाओं का आस्वादन करने मात्र से हमारी आसक्ति भगवान के भक्ति में हो जाती है। ये रूपा जी आगे लिखते हैं कि यद्यपि इसे समझ पाना कुछ कठिन है किंतु यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत अपना ले और कृष्ण को समझने का प्रयास करे तो यह अत्यंत सरल है। भक्ति मार्ग कठिन है लेकिन अगर भगवान के विषय में सुनते हैं तो बिल्कुल वो सहज हो जाता है। केवल सुनने से सहज हो जाता है, ये तो बहुत ही कठिन मार्ग है। इतना लोग यज्ञ यज्ञांत करने वाले, इतने वेदों के मतलब श्लोकों का उच्चारण करते हैं लेकिन उनको क्या मिल पाता है। लेकिन भगवान के गुणों को सुनने वालों को स्वयं भगवान ही मिल जाते हैं। कितना आसान तरीका है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि कर्मकांड के अनुसार यज्ञ करना समय का अपव्यय है और कर्मकांड को त्याग करके ज्ञान कांड को स्वीकारना भी व्यर्थ है। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है कि कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड अमृत बलिया एवं खाय नाना योनि सदा फिरे कदर यह भक्षण करे तार जन्म अध पाते आए। कर्मकांड या ज्ञान कांड का जीवन विष मात्र के तुल है और जो भी ऐसा जीवन पाता है उसको उसके मानो भाग्य फूटे हो। जो केवल कर्मकांड में लगा हुआ है, भगवत भक्ति की स्थिति को प्राप्त करने के साधनों को छोड़कर केवल इन सब कर्मों में अपने को लगाया हुआ है, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि मानो कि उसके भाग्य फूटे हुए। इसी प्रकार ज्ञान कांड में मनुष्य को पुनः इसी जगत में आना होता है, एकमात्र परम पुरुष की पूजा की भगवत धाम जाने की ही गारंटी है। जो एकमात्र भगवान की पूजा करता है उसी से गारंटी है तो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। अर्थात निवृत्ति मार्ग का एकमात्र अर्थ यह हुआ कि केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए, केवल कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए केवल श्रवण सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि जिस प्रसंग के विषय में, जिस स्थिति के विषय में अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति होती है। यह संसारिक स्थिति है कि अगर हम किसी चीज को या किसी गाने को या संसारिक वस्तुओं को अगर सुन लेते हैं तो पहले उस चीज को कान पकड़ता है। किसी भी गाना को कान पकड़ता है, किसी गलत दृश्य को आंख पकड़ता है, और जब ये ज्ञान इंद्रियां पकड़ती हैं तो उसी का फिर चिंतन मन में होता है, और मन ऐसे पकड़ लेता है कि इतने बड़े शरीर को वहां घसीट के ले जाता है। इसलिए इन स्थितियों से हटने के लिए अधिकतर भगवान के विषय में सुनने की जरूरत है। सूरदास जी एक पद लिखते हैं इसके ऊपर कि कितनी एक निष्ठता होनी चाहिए। एक उपासक है तो उपास्य के प्रति क्या भाव होना चाहिए। एक पद में लिखते हैं कि जाकी उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। जाकी उपासना मतलब जिसकी हम उपासना करते हैं, पूजन पाठन करते हैं, ताही की वासना उसी के कर्मों को, उसी के कार्यों को अपने हृदय में बसाए रहना चाहिए। वासना का अर्थ है कि उसी चीज को अंदर चलते रहने देना चाहिए, हृदय में बसाए रहना चाहिए। ताही के नाम रूप गुण गाइए, जिसका उपासना कर रहे हो उसी को अपने हृदय के अंदर बसाओ और उसी के नाम को, रूप को, गुण को और लीला को गाते रहो। यह अनन्य परम परिपाटी वृंदावनवासी अनत न जाइए। जब इस प्रकार की अपने उपास्य के प्रति अगर हमारी उस प्रकार की वासना होती है तो हम भगवान के धाम में नित्य वास करने लायक बन जाते हैं। वृंदावन को छोड़कर के हम अन्य स्थितियों का चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने उपास्य के वासना को, कर्मों को, उनकी प्रतिक्रिया को अपने हृदय में हमने धारण किया है। यह अनन्य परम परिपाटी वृंदावन वसी अनत न जाइए। जाकी उपासना ताही की उपासना, ताही के नाम रूप गुण गाइए। सेई व्यभिचारिणी आन कहे आन करे। सुन लीजिए, हम लोगों के ऊपर ये सब चीजें लागू हो सकता है कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं तो देते हैं, कहते हैं क्या, करते हैं क्या, और किस प्रकार की वासना अपने हृदय के अंदर होती है अपने आप हम आकलन कर सकते हैं कि सोई व्यभिचारिणी आन कहे आन करे। व्यभिचारिणी यहां बुद्धि को कहा गया है कि हम लोग कुछ कहते तो जरूर है, कुछ करते तो के लिए तैयार नहीं होते। कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सोई व्यभिचारिणी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। अगर वैसे व्यक्ति जिसकी कथनी और करनी में केवल अंतर ही अंतर है, कहता कुछ है और करता कुछ है, अगर वैसे व्यक्ति की संगति में जाते हैं या वैसे व्यक्ति की अगर दर्शन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का देखे मुख देखे दारुण दुख पाइए। ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से दारुण मतलब बहुत गंभीर भारी दुख की अनुभूति होती है, दुखद स्थिति आ जाती है। आप सोचिए कि जिस उपास्य के प्रति अगर हमारी वासना ठीक नहीं है या किसी भी व्यक्ति की इस प्रकार की अच्छी भावना नहीं है कि कहता कुछ है करता कुछ है, तो अगर वैसे व्यक्ति का अगर शकल देखेंगे तो हमें दुख की अनुभूति तो होगी। मोर दास कहाइन आशा करिए तो कही यह विश्वासा। यह सूरदास जी कहते हैं कि जो भगवान के दास होता है, मोर दास कहाइन आशा करही तो कही करही विश्वासा। जो भगवान का नित्य दास होता है उसको एकमात्र यही विश्वास होता है कि जो मैं कर रहा हूं और जो भगवान ने कहा है यही हमारे लिए उच्चतम स्थिति है और हम इसी को पकड़े रहे। व्यास होई उपहास त्रास किए आशा अछत किए वरुण दास कहाई। अर्थात जो इस प्रकार की स्थिति में अपने आप को ढाल लेता है वही बरु अर्थात श्रेष्ठ दास कहलाने लायक है। क्योंकि जिसके वह उपासना कर रहा है उसी को अपने वासना अपने हृदय में उसी की रूप को गुण को लीला को अपने हृदय में वास कराया है, वह अपने आप को इन संसार की और वासनाओं से अपने को ऊपर उठा सकता है। यह भाव जब अपने अंदर हृदय में घर करता है तब हम उस निवृत्ति मार्ग के परम पराकाष्ठा को हम प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो लेस मात्र में अगर किसी भी चीज की अगर आशा है या किसी भी चीज की अगर प्राप्त करने की भावना है तो मनुष्य वहां फंस जाए, अपने आप को बांध देगा। इसलिए अपने आप को छुड़ाए रखने के लिए केवल जो क्रमवाइज जो सुनने की विधि बताई गई है और क्रमशः विकास की स्थिति बताई गई है, ब्राह्मणत्व के स्थिति से भी सन्यास के आश्रम से भी सन्यासी का काम क्या है? सब कुछ त्याग दिया तो केवल कृष्ण को लेकर के अपने हृदय में घूम रहा। अगर सब कुछ न्यास करने के बाद भी अगर उसके हृदय में कृष्ण के प्रति उतनी पूर्ण रूपेण समर्पण की वो स्थिति नहीं है तो वह संन्यास किस काम का? युधिष्ठिर महाराज का कहने अरे नारद जी का कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्ति मार्ग है वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही निवृत्ति मार्ग को प्राप्त होकर के कृष्ण के चरणों में अपने को लगा लेता है, अर्थात कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और यही इस प्रकार की स्थिति को बनाने के लिए अगर हम ठीक से इन कथाओं को सुनते हैं समझते हैं तो हम इन प्रसंग को समझ पाते हैं। केचित केवल्या भक्ति का वर्णन है इस श्लोक के अंदर। केचित केवल्या भक्त वासुदेव परायण। केवल एकमात्र वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति जिनका लगाव है वही इस निवृत्ति मार्ग के पथ को पकड़े हुए हैं। अन्यथा जो वासुदेव को खुश करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनके भक्ति के पथ पर नहीं चल रहे हैं, वो बंधे हुए हैं। कितना भी उत्कृष्ट अपने को समझे। हरे कृष्ण। इस प्रसंग में अगर कोई कोई प्रश्न है कोई सुझाव है तो आप बोलिए।
तो ये भी एक प्रकार से ट्रांसेंडेंटलिस्ट हुए, तो ये भी निवृत्ति मार्ग में ही तो आए।
नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लास्ट में निचोड़ दे दिया ना कि ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति भी और भक्ति की स्थिति को जो छोड़ दिए हैं वो पूर्णता निवृत्ति मार्ग में नहीं। ये भक्ति में सहायता कर सकता है क्या, भक्ति का एक अंग बन सकता है, लेकिन अगर कोई सोचे कि हम ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, त्याग से प्राप्त कर लेंगे, केवल तपस्या से कर लेंगे, तो यह पूर्ण नहीं। क्योंकि जो चीज हम लोग छोड़ रहे हैं क्रमशः, उसके पीछे एक ही टारगेट है, कृष्ण को प्राप्त करना। कृष्ण कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके लिए जो हम लोग त्याग कर रहे हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वही निवृत्ति मार्ग है। ज्ञानी अगर ज्ञान में फंस गए, त्यागी अपने त्याग में फंस गए, तपस्वी अपने तपस्या में फंस गए, तो उनका जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। क्योंकि निवृत्ति मार्ग का शाब्दिक अर्थ यही है, नीच मतलब सारे संसार की स्थिति, सारे पद पदन्यास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उसको छोड़ देना, केवल हमारा वृत्ति बचा लास्ट में केवल कृष्ण, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्राप्ति। हरे कृष्ण। ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, उपस्थित भक्तवृंद की, गौर हरि प्रमानंदे।